बिल्कुल सीधा होकर बैठेंगे और आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं, बट आंखें अगर खुली हों तो इधर उधर हमें नहीं देखना है, पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ले आए। अपने मन को देखें, मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करें अपने मन को। अपने ध्यान को प्रेजेंट में ले आए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करें, जो कुछ हुआ मेरा ही कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, ओम शांति। ओम शांति। एक बार सभी मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। काफी चेहरे तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ 5-7 चेहरे मुझे लग रहे हैं थोड़ा सा कम मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति, क्योंकि एक लाइन कही जाती है, आपने सुनी होगी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। सुना है सबने? सुना है? आवाज नहीं आ रही, सुना है? अच्छे से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि यहां जब हम आए हैं, आप में से पहली बार कौन आया है? फर्स्ट टाइम? सभी फर्स्ट टाइम आए हैं, वेरी गुड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही घर में, अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज शायद आप में से किसी को इस भाग्य का अनुभव हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आपको ये दिन याद आएगा कि वो दिन हम वहां गए थे और जिससे हमारे जीवन की जो दिशा है वो पूरी तरह चेंज हो गई। और यहां जैसे आप कल आए होंगे तो यहां के वाइब्रेशंस आते ही आपको फील हुए होंगे। आप में से कौन कौन है, सच सच बताना है, जिसको यहां आते ही एक अलग वाइब्रेशंस फील हुए? काफी हैं, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब हैं, है ना, क्योंकि हर स्थान के वाइब्रेशंस अलग अलग हैं। हम सबके घर के वाइब्रेशंस भी सेम हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, है ना। ऑफिस के वाइब्रेशंस भी अलग अलग हैं, घर के वाइब्रेशंस भी अलग अलग हैं। क्यों यहां पर अलग वाइब्रेशंस हैं? क्योंकि यहां पर जैसे आप आए हैं ऐसे ही जो बाहर से लोग आते हैं प्लस यहां जो भाई बहने रहते हैं, हर दिन नियम है जीवन का कि हमें सुबह उठकर मेडिटेट करना है। एंड मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं, आप सब सीखना चाहते भी होंगे, आज भी सुबह सेशन हुआ होगा, कल परसों चलते रहेंगे, तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह उठकर 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेट कर लें और खत्म, है ना। दैट इज नॉट मेडिटेशन। वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि सुबह उठकर हमने मेडिटेट किया, दैट मीन्स दिन की स्टार्टिंग वैसी कर ली, पर पूरे दिन भर बीच बीच में हमें वो मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन जब हम अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं मेडिटेशन वो क्या है, ब्रीदिंग को मेडिटेशन समझते हैं, है ना, कि हमने अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दिया और हम कहते हैं कि दिस इज मेडिटेशन। वो पहला स्टेप है जिसको हम कह सकते हैं रिलैक्सिंग टेक्निक्स, कि हमने ब्रीदिंग पे ध्यान दिया या प्राणायाम, आज योगा डे है तो प्राणायाम किया, ये सब जो हमने प्रैक्टिसेस की, इसको एग्जैक्टली मेडिटेशन नहीं कहा जा सकता है। इसको कहा जाता है, आपने सुना होगा, हठ योग, फिजिकल योगा। तो ये जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरा शरीर एकाग्र नहीं है, मेरी सेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब तक मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र नहीं किया जा सकता। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप कि हमने अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, प्राणायाम किया, पर उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, दो स्टेप्स अगर हम कहें, उसके डिटेल में आप समझेंगे, आज सुबह का सेशन आपने किया होगा, मैं कौन हूं, जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस, है ना, ये अवेयरनेस कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। और आत्मा की तीन शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, आज सुबह सुना होगा ना, मन बुद्धि संस्कार। क्योंकि बचपन से मन के बारे में इतना कंफ्यूजन है, मन दिल हार्ट दिमाग बुद्धि, कोई कहता है मन यहां है, कोई कहता है यहां है, इतना कंफ्यूज हो गए। और किसी किसी ने आकर हमें क्या कहा बचपन से, कि मन को एकाग्र करना आसान है या मुश्किल है, क्या सुना है बचपन से, मन को कंट्रोल करना इजी और डिफिकल्ट। कहा जाता है कि पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले सरकाया जा सकता है ना, समुन्दर के पानी को सुखाया जा सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब तक इस प्रकार के गलत बिलीफ हमने पकड़े होंगे, तब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। और यहां आकर हमने क्या सीखा, मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मन या वो एनर्जी, मैं वो एनर्जी हूं जो अपने मन को कंट्रोल कर सकती है। और आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस। एक प्रश्न है, क्या इमोशंस जरूरी हैं या नहीं, इमोशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इमोशन लेस होना सही है। जैसे कई लोग जब आध्यात्मिकता को सुनते हैं या इस पाथ पर बढ़ते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा मतलब सारे इमोशंस ही खत्म कर दें हम, क्योंकि जब एक शब्द हम सुनते हैं डिटैच, आप सबने ये शब्द कभी ना कभी सुना होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअल में, पावर टू डिटैच, जिसको हिंदी में कहा जाता है साक्षी, सोल कॉन्शियसनेस कहें, साक्षी भाव कहें। क्योंकि जब तक हम डिटैच नहीं होंगे तब तक परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता। दो शब्द है, डिस्कनेक्ट कनेक्ट। जब तक इस दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हुए तब तक परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जब हम शब्द सुनते हैं डिटैचमेंट डिस्कनेक्ट, तो कई बार लगता है अच्छा मतलब सारे रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे। आज भी सेशन के बाद एक ब्रदर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब कर रहा हूं, पैसा अच्छे से मिल रहा है, फैमिली है, लेकिन मैं आना चाहता हूं इस बात पर, लेकिन छोड़ूं कैसे वो। तो मैंने उनको कहा छोड़ना नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़कर हम कहें कि स्पिरिचुअल हमें होना है, नहीं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते हुए कैसे हम डिटैच होकर आनंद को फील कर कर खुशी को फील करके, आध्यात्मिकता का मतलब दुखी परेशान उदास नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब चेहरे पर क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए चेहरे पे, स्माइल। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब मन हल्का होगा हमारा चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराता हुआ, और जब मन भारी होगा तब मन कैसा, चेहरा कैसा होगा, उदास। इसीलिए हम किसी के चेहरे को देखकर भी बता सकते हैं, जैसे आप सब यहां बैठे हैं, आप सबके चेहरे सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आप सबके चेहरे को देखकर भी बताया जा सकता है मन में क्या चल रहा है ना। आप में से कुछ हैं जो बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, कुछ हैं जो कह रहे हैं डिटैचमेंट, अच्छा इसका मतलब तो ये होता है। मतलब हमारा मन क्या करता है, जैसे एक शब्द सुनता है कहीं 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 पहुंच जाता है। जो किसी ने हमें कहा था, जैसे एंगर शब्द है, मान लीजिए एंगर सुना तो कहां कहां पहुंच जाता है, उसने मेरे से एंगर किया, ऐसा हुआ था, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जो भी अलग अलग चीजें। तो जब हम ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति का मीनिंग क्या है, आप में से कोई बताएंगे जो नए हैं? ओम शांति का मीनिंग क्या है, जो भी नए हैं बताएं, आप में से कोई बताएं, इधर थर्ड रो में जो बैठे हैं ब्रदर, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ओम शांति का मतलब क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अब आत्मा शब्द जब सुनते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं, है ना। आप चाहे आत्मा वर्ड बोलिए, चाहे कॉन्शियसनेस बोलिए, चाहे अवेयरनेस बोलिए, चाहे सोल एनर्जी बीइंग, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है वो बोलिए। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि आज सुबह के सेशन में आपने समझा होगा, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं कौन हूं, शांत स्वरूप आत्मा। जब हम शांति शब्द बोलते हैं, शांति का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यहां आकर 3 दिन शांत रहना आसान है या घर पे शांत रहना आसान है, क्या कहेंगे, यहां या घर पे? यहां तो बहुत आसान है, क्यों, कोई टेंशन नहीं है, खाना बना हुआ है, सुबह सेशन करना है, कोई सोचना नहीं है कुछ। लेकिन कुछ कुछ तो यहां रहकर भी अशांत हो सकते हैं, क्योंकि मन तन से तो हम यहां पर हैं, कई बार मन क्या होता है कहीं और ही घूम रहा होता है, अब जाके ये करना पड़ेगा, काम पाइल अप हो जाएगा, वो करना है, मतलब यहां रहकर भी सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो रियल शांति का मीनिंग क्या है, बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, जिसने होता है ना, कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं जो आपके जीवन को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो एक बार एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया गया और उसका बहुत बड़ा इनाम रखा गया, 50 लाख रुपीज, जो विनर होगा। और उसमें कहा गया कि पूरे इंडिया से जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी पेंटर्स हैं, वो आए और उन्हें एक पेंटिंग बनानी थी शांति की, जो डिपिक्ट करे शांति को। सबने बनाई अच्छी, उसमें से 5-6 को सिलेक्ट किया गया, बहुत सुंदर, मतलब आप उसको देखेंगे आपको शांति अनुभव होगी। एक थी समुन्दर के किनारा, बिल्कुल एकदम शांत एक व्यक्ति बैठा है वहां पर। एक था झील और एक नदी, एक पहाड़ नदी बह रही है, एक झील, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी। लेकिन जिसको नंबर 1 दिया गया, जिसको इनाम दिया गया, उसको जब दिखाया गया तो सभी के मन में आया कि कुछ तो गलती हुई है। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें एकदम रात, अंधेरी रात, बिजली चमक रही है और बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा उसने डिपिक्ट किया उसमें। सबने कहा कुछ तो गलती हुई है, ये तो अशांति है। लेकिन उन्होंने कहा इसको ध्यान से देखिए। जब उसको ध्यान से देखा तो उसमें क्या था, एक झोपड़ी में एक व्यक्ति बैठा है और वो बिल्कुल शांत है। असली शांति का मतलब क्या है, चारों तरफ अशांति है, फिर भी मैं क्या हूं, फिर भी मैं क्या हूं, शांत। घर जाएंगे वहां पर भी क्या रहेंगे शान, ऑफिस में जाएंगे वहां पर भी क्या रहेंगे शान। इसीलिए मेडिटेशन हमें दो समय प्रैक्टिस करनी है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, मैंने भी वो गलती की थी शुरू शुरू में, जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे लगता था बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए तभी हम मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन जब साइलेंस में बैठते हैं, मान लो आप घर पे बैठे हो, आप तो साइलेंस में बैठे हो लेकिन बाकी सब तो अपना काम करेंगे। आप बैठे हैं, आपने कहा चलो ये समय है 10 मिनट, आई हैव 10 मिनट्स, लेट्स मेडिटेट। आपने जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू किया, आपके साथ में जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया, फोन पे बात करना शुरू कर दिया। अब हमारा मन अशांत। कई लोग आते हैं वो कहते कि मेरी जो पत्नी है उसको उसी समय याद आता है जब मुझे मेडिटेशन में बैठना है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मेरे पति को तभी याद आता है जब मुझे मेडिटेशन में बैठना है, तभी वो गाना चलाते हैं, तभी वो बात करते हैं और जानकर पास आकर बात करते हैं। एक प्रैक्टिस है शांति में, सुबह सुबह पॉसिबल है वो चीज, दिन भर में शोर में भी हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। शुरू में मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। एंड हम सबको ये कभी ना कभी हमने किया है, एक्सपीरियंस है, आप सबने ये अनुभव किया होगा कि जब हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें बहुत पसंद है तो क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं हम सब चीजों से। किसी ने आकर कुछ कहा था, वो कहता है मैंने ये बोला, आप कहीं मेरे को याद ही नहीं आप आए थे, क्योंकि वी वर सो एनग्रोस्ड इन डूइंग समथिंग। ऐसे ही जब मेडिटेशन में हमें अच्छा लगता है, जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं तो आसपास का शोर, आसपास की बातें हमें इफेक्ट करना बंद कर देती हैं। उसके लिए यहां से शुरुआत करेंगे। आप सबका सुबह का समय भी मेडिटेशन का है, आज था सुबह, आज नहीं होगा ना, आज था। आप में से कौन कौन आए सुबह, सभी आए, कितने बजे, 4 बजे, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, सभी के सभी पहुंच गए, ताली बजा दीजिए अपने लिए, वेरी गुड। क्योंकि बहुत नए लोग आते हैं ना तो वो कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं है या हमें आदत नहीं है मेडिटेट करने की। तो आज से एक प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए, या एक भी नहीं, तीन चीजें। रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद को देने हैं मेडिटेशन। रात को सोने से पहले कितना समय, 10 मिनट्स। सुबह उठते ही मिनिमम 10 मिनट्स। कर सकते हैं ये दो काम, यस और नो? अभी तो आवाज बिल्कुल स्लो हो गई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसी किसी की आवाज तो नहीं आ रही, मन से आ रहा है, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, यहां कोशिश शब्द नहीं कहना है, यहां पर तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, करना ही है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस। उसमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हर एक घंटे के बाद 1 मिनट। इसके लिए सिंपल विधि क्या है जो मैं यूज करता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को सिखाई है जिनसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है, जाकर या सेशन के बाद, ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारीज, उसमें आप एक सिलेक्शन आएगा म्यूजिक, उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं एंड 1 घंटे के बाद एक म्यूजिक प्ले होगा। दैट इज अ रिमाइंडर, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए बार बार कि नहीं, इस समय थोड़े समय मन पर, अपने मन पर ध्यान रखते हैं, अपने इमोशंस पर ध्यान लेकर आते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपने इमोशंस पर ध्यान लेकर आएंगे, हमें समझ आएगा इस इमोशन के साथ कैसे डील करना है, ये मैं क्यों फील कर रहा हूं, इसको कैसे हील करना है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन सबसे सुंदर काउंसलिंग क्या है, सबसे इफेक्टिव, सेल्फ काउंसलिंग। खुद के साथ बैठना, अपनी काउंसलिंग करनी है हमें, ठीक है। चलो एक एक्टिविटी से हम शुरू करते हैं, फिर हम सेशन की ओर बढ़ेंगे। कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इस शब्द के बारे में। इमोशनल होना है, नहीं होना है, रैशनल होना है, देयर इज सो मच कंफ्यूजन। तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, सभी खड़े हो जाएंगे तो एक एक का ग्रुप बना लेंगे हम, एक दूसरे के सामने जैसे एक एक ऐसे करके एक दूसरे को देखेंगे। एक एक का ग्रुप बना लें, जो रह जाएं एक बार देख लेते हैं, पहले एक एक का ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन रह गया है ग्रुप बनाए बिना? हाँ, तो आप आगे आ जाइए ब्रदर। हाँ, आप उनके साथ बना लीजिए, ये खाली है इधर। हाँ, जिन जिनका नहीं बना है हाथ खड़ा करें, जिनका ग्रुप नहीं बना है। हाँ, आपस में देख लीजिए, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, हो गया। ओके, चलो एक दूसरे को देखेंगे। एक दूसरे को देखकर स्माइल करेंगे, स्पिरिचुअल स्माइल। हंसना नहीं है, एक होता है जोर जोर से हंसना, वो अलग चीज है, एक है स्माइल करना। ठीक है, एक दूसरे को देखकर स्माइल करेंगे। अच्छा, जो जो एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं हाथ मिला लीजिए। अब क्या करना है ध्यान से सुनेंगे, जो मेरे इस साइड है लेफ्ट साइड, वो सबसे पहले जो मैं बोलूंगा पहले लेफ्ट साइड वाले बोलेंगे, जो राइट साइड वाले हैं उसके बाद उसको रिपीट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो पहले कौन शुरू करेगा? मेरे लेफ्ट में जो है, आप बहुत अच्छे हैं, स्माइल करके कुछ तो इतना चेहरा, शायद हो सकता है एक दूसरे को जानते हैं इसलिए कह रहे अच्छे तो नहीं है, इनको बोलना पड़ेगा आप अच्छे हैं, दिल से बोलिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, फिर से एक मिनट, पहले किसको बोलना है? लेफ्ट। फिर किसको रिपीट करना है? राइट वाले को वही रिपीट करना है जो लेफ्ट वाला बोलेगा। ठीक है, चलो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विशेष हैं। हाँ, एक बार बोलना है, ठीक है, दो बार नहीं, एक बार, एक बार। ठीक है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ कर देना। मैं आपको स्वीकार करता हूं। आप बहुत खराब हैं। चलिए जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए, बैठ जाएंगे। अभी हमने ये प्रैक्टिस की, पीछे आवाज आ रही है, आप में से किसी को बहुत अच्छा लगा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा लगा? दो बार अच्छा लगता है, एक है अच्छा सुनकर, अच्छा सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बोलकर अच्छा लगता है या नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और एक नियम को हमें समझना है कि जो हम, जैसे यहां हमने सीखा ना इस एक्टिविटी में, कि इसने जो कहा दूसरा भी, दूसरे ने क्या किया उसको रिपीट किया। आप में से किसी किसी ने जैसे कहा ना आप बहुत खराब हैं, किसी किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने बोला तो सामने वाले ने भी रिपीट किया। जैसा हम दूसरों को देंगे, बचपन से हमने ये सुना हुआ है, लेकिन हमने इसको इंप्लीमेंट, ज्यादातर लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कहां किया है? सुपरफिशियल लेवल पर, दैट मींस वर्ड्स लेवल पे। हमें पता है कि सामने वाले को ये बोलेंगे तो सामने वाला भी गलत बोलेगा। कई बार बोलना चाहते भी नहीं है, गुस्से में बोल देते हैं, इरिटेशन में बोल देते हैं, हर्ट हो जाते हैं इसलिए ऐसा बोल देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम बोलना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे मुख से निकल गया। और जब हम किसी को नेगेटिव देते हैं तो वहां से नेगेटिव जरूर आएगा। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग। अब ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं किसी को अप्रिशिएट किया उसने अप्रिशिएट नहीं किया और आप कहें बस ये तो वर्क ही नहीं करता है। कोई करे या ना करे लेकिन आप अपने संस्कार को ये बनाइए, आप देखेंगे 95% लोग आपको अप्रिशिएट वापस जरूर करें। तो दूसरों को जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। इमोशंस तो हमें पता है क्या है ना, अलग अलग इमोशंस हैं, चाहे वो एंगर है, चाहे वो लव है, चाहे वो इरिटेशन है, बहुत सारे इमोशंस हैं अलग अलग। दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे बार बार, एक है इमोशनल, दूसरा है रैशनल, जिसको लॉजिकल बोल देते हैं, रैशनल बोल देते हैं। तो आप में से किस किस को लगता है कि इमोशनल होना अच्छा है? दो में से चूज करना है, इमोशनल रैशनल। आप में से किस किस को लगता है कि इमोशनल होना अच्छा है? ओके। किस किस को लगता है कि लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए? ओके, ठीक है। और आप में से किस किस को लगता है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, इमोशनल प्लस रैशनल? ऑलमोस्ट सबको लगता है ऐसा। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इमोशनल या रैशनल नहीं होता है ना, मिक्स होता है, इमोशनल प्लस रैशनल। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मींस हमारे अंदर इमोशंस भी हैं पर साथ ही साथ हम रैशनल भी हैं। हमें पता है अपने इमोशन से कैसे डील करना है और सामने वाले के इमोशन से भी हमें कैसे डील करना है। क्योंकि बहुत एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा या कोई भी कोलीग आपके पास आया, उसने आकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अब वो सुना रहा है, अब ये जो व्यक्ति है सुन रहा है, अगर ये सिर्फ इमोशनल है तो क्या होगा, वो दुख की बात सुनते सुनते ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कहेगा बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत खराब हुआ। लेकिन जो सामने सुनाने वाला आया है, क्या उसे ये उत्तर चाहिए था हमसे? बिल्कुल नहीं चाहिए था। वो आया था क्योंकि उसको सॉल्यूशन चाहिए था, उसे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। वो आया हमारे पास, उसने कहा ये प्रॉब्लम है, इसने ये किया, उसने वो किया, उसे चाहिए था कि हम उसको समझें। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, एक तो है उसके दुख में दुखी हो गए, अब वो तो कभी सॉल्यूशन दे नहीं सकेगा। इसका दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा एक्सट्रीम भी है, कोई आया उसने सुनाया और हमने कहा छोड़ो मुझे ये काम है, मुझे जाना है। दैट मींस जिसको उसके इमोशंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्या उसको वो व्यक्ति चाहिए? वो भी नहीं चाहिए था। उसको कौन चाहिए था? जिसको एक शब्द है बहुत सुंदर, आपने सुना होगा, आपने सुना है एम्पैथी, सुना है आपने, है ना? हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब दूसरे के दुख में क्या होना है, दूसरे के दुख में दुखी होना नहीं है। नहीं तो हमारे यहां बचपन से क्या बिठाया गया है, किसी ने दुख सुनाया हम दुखी नहीं हुए ना, तो सामने वाला कहता है आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप पत्थर हैं क्या, आपको फील ही नहीं हो रहा है कुछ। और कई बार अंदर से हमें दुख फील भी नहीं हो रहा होता है, फिर भी हम सामने से दिखा रहे होते हैं किसी के दुख में हमें दुखी। एक बार बोलिए सभी, दुख में हमें दुखी नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, सबसे पहला काम उनके दुख में दुखी होना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर हो जाएं, इनडिफरेंट हो जाएं। हमने सुना, हमने उसके इमोशंस को समझा, लेकिन डिटैच रहते हुए उसको सॉल्यूशन दिया। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने। तो एक भाई आए तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लोग मुझे बहुत हर्ट करते हैं। मतलब 5 मिनट्स उन्होंने मेरे से बोला, उसमें से कम मुझे लगता है, गिना तो नहीं मैंने, बट 100 टाइम्स एक बात बोली होगी, उन्होंने मुझे हर्ट किया, लोग मुझे हर्ट करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। सबसे पहला काम सुना, अगर मैं बीच में कुछ बोलूंगा नहीं समझ पाएगा, सुना आराम से, फील किया कि वो क्या फील कर रहा है, एम्पथी। लेकिन दुखी नहीं होना है, क्यों? अगर हम दुखी होंगे हम कभी भी सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब जब उसने ये सुनाया, अब मेरा मेरे पास ऑप्शन है उसको उत्तर देने का, जब मेरी बारी है, मेरी टर्न है। हम ज्यादातर लोग हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, राइट? दैट इज नॉट वट ही वॉन्टेड टू लिसन। हो सकता है ही वॉन्टेड टू लिसन, वही सुनना चाहता था वो, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं था जो हमें सुनाना था। हमें क्या बताना है उसको बहुत प्यार से कि देखिए ठीक है आपके साथ ये हुआ, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन हर्ट होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में है। आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली हैं। आपको ऐसे नहीं कोई भी आके हर्ट कर सकता। किसी ने बोल दिया कि आपकी हाइट बहुत छोटी है, हर्ट हो गए, नहीं, आप शक्तिशाली हैं, आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसे कहा जाएगा इमोशनली इंटेलिजेंट, कि हम सामने वाले के इमोशंस को समझे और उसको सही सॉल्यूशन दे सके। क्यों जरूरी है ये? एक होता है IQ। आजकल बहुत सारी कंपनीज जब एक ऊंची पोस्ट के लिए हायर करते हैं तो वो एक टेस्ट लेते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप घर पे जाके, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, आप वहां पर अपना टेस्ट दे सकते हैं, आपको पता लगेगा कि मैं कितना इमोशनली इंटेलिजेंट हूं। उसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगी कि किसी ने आपको गलत बोला, आप कैसा फील करते हैं, किसी ने आपका काम जैसे आपने कहा वो नहीं किया, या आप गाड़ी पे जा रहे हैं कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। आज भी एक भाई से बात हो रही थी तो उसने कहा कोई रॉन्ग साइड से जाता है, यहां मैं, मेरी पत्नी साथ में बैठी है, मैं सुनाता हूं उसको, मेरे भी शीशे बंद है, उसके भी शीशे बंद है, ना उसको सुन रहा, लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं दिया कि हम क्यों फील कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, उसकी वजह कौन है? सामने वाला। हम बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं सामने वाले को कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, रीजन ये है इसलिए इट इज जस्टिफाइड। लेकिन हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये मैं इमोशन क्यों फील कर रहा हूं, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे उससे कैसे डील करना है। क्या, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, शांत रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता? शांत रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता? नहीं रहा जा सकता या रहा जा सकता है? रहा तो जा सकता है, लेकिन वो शांत रहने के लिए मुझे सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी शांति है, हमारे मन की स्थिति है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं करेंगी। और अगर हमने सुबह सुबह याद नहीं दिलाया, दिन भर में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी और हम परेशान होते जाएंगे। अब ये हाई IQ एंड लो IQ, इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम समझते हैं। हाई IQ है असर्टिव, स्ट्रिक्ट। लो IQ क्या है? डोमिनेटिंग नेचर। जैसे कई लोगों की नेचर क्या होती है? डोमिनेट करने की। मान लीजिए मेरे नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, मुझे उनको समझा, घर पे है, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो अब हम गुस्सा करके भी समझा सकते हैं बच्चे को, परेशान होके भी समझा सकते हैं और स्ट्रिक्ट होकर भी समझा सकते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो मोबाइल यूज कर रहा है, हमें पता है इसके लिए अच्छा नहीं है, वहां स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। आपके नीचे चार लोग काम कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट देना है उनको, आपको सीनियर्स को रिपोर्ट देना है, वो सही से काम नहीं कर रहे, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड स्ट्रिक्टनेस। एक है लोफुल होना, परमात्मा आकर समझाते हैं बैलेंस रखना है लव एंड लो का, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, प्यार के साथ क्या चाहिए, लोफुल भी चाहिए। जहां डांटना है वहां जरूरी है डांटना, लेकिन बिना गुस्सा किए समझाना, बिना गुस्सा किए स्ट्रिक्ट होना। अब इसमें फर्क क्या है, क्योंकि देर इज अ वेरी सटल डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वो, जब यहां हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं और फिर समझा रहे हैं, वो गुस्सा है। यहां हम इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, और यहां हम इरिटेटेड नहीं हैं। हमें पता है सबके संस्कार अपने अपने हैं, सबकी यात्रा अपनी अपनी है। मुझे एक रोल मिला हुआ है मदर का, फादर का, बॉस का, मुझे समझाना जरूरी है, लेकिन अपने मन की स्थिति को समझाना सबसे पहले जरूरी है। दूसरों को समझाने से पहले या दूसरों को समझाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको समझाना है, स्वयं को। फिर समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा कई जगह पर, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर नहीं होनी चाहिए, करना ही है नहीं। सामने वाले को समझाएं, उनको बता दें कि देखो अगर ऐसा किया, मान लीजिए एक बॉस है और नीचे वाला अच्छे से काम नहीं कर रहा है, समय पे नहीं आ रहा है, तो उसे समझाना पड़ेगा कि अगर आप समय पे नहीं आए, एक दो बार मैं माफ कर दूंगा, उसके बाद फिर सीनियर्स को बताना पड़ेगा। ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर प्रेशर डालना, और उस पर प्रेशर डालने से पहले किस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, स्वयं पर, है ना। हमें वो इरिटेशन, डिस्टर्बेंस पहले खुद फील करनी पड़ेगी, तब हम दूसरों को वो प्रेशर डाल सकते हैं। सेकंड, जो हमने समझा था कि किसी ने आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताई, एक है इनडिफरेंट, वो कहेंगे हमें सुनना ही नहीं है, आप जाएंगे उनको बताएंगे, वो मोबाइल यूज कर रहे होंगे अपना, ऐसा भी नहीं बनना है। लेकिन साथ ही साथ हमें किसी के दुख में दुखी नहीं होना है, क्योंकि बचपन से ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कोई दुखी व्यक्ति है, हमें भी दुखी हो जाना चाहिए, अगर दुखी नहीं हुए दैट मीन्स हम अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी दुखी नहीं होना है, कोई दुखी है हमें शांत रहकर एम्पैथी, मतलब उसको हम समझा सकें, लेकिन उसको समझाने से पहले अपनी पावर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अपने को कहां रखना पड़ेगा, यहां पर। एक व्यक्ति आया, मान लीजिए वो इस वाइब्रेशंस में है, हम भी इसमें हैं, अब उसने कुछ बताया, हम भी इसमें हैं, क्या हम समझा पाएंगे उसको, नहीं समझा पाएंगे। हमें कहां होना पड़ेगा, यहां पर। उसके लिए रोज मेडिटेशन करना, उसके लिए अपने मन को चेक करना, अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स हैं उसको खत्म करना है या नहीं करना है, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, थॉट्स तो थॉट्स हैं, चलते रहने दो, ऐसा नहीं सुनना है। जो हमें इस प्रकार का ज्ञान दे रहा है उनका नहीं सुनना है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे बिलीव्स बनते हैं। फिल्टर लगाना है हमें, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, यही तो जीवन है एक्चुअल में देखा जाए तो। जिसके बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसका जीवन नेगेटिव है, जिसके पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं उसका जीवन पॉजिटिव है। आप भी यहां बैठे हैं, आप में से कुछ हैं, अगर खुद को चेक करेंगे, कुछ होंगे तो ज्यादातर पॉजिटिव रहते होंगे, कुछ होंगे जो ज्यादातर नेगेटिव रहते होंगे। अब उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं नेगेटिव है तो है क्या करें, नहीं, काम करना पड़ेगा। अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, मुझे अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, ऐसे ही अगर मेरा मन हेल्दी नहीं है तो मुझे अपने मन पे काम करना पड़ेगा। हाई आईक्यू, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, घर का एग्जाम्पल लें या ऑफिस का एग्जाम्पल लें आप, first cares about person, knowing that productivity will be taken care of. Only cares about productivity. बच्चों का एग्जाम्पल अगर हम लें, आजकल आप देखते हैं कई बच्चों को बहुत प्रेशर है एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का, और कई बच्चे हैं सुसाइड तक कर लेते हैं. रीजन क्या है उसका? जब वो अपने लेटर में लिखते हैं कि बहुत प्रेशर था टीचर्स का, पेरेंट्स का, राइट? हमें अपने को ऐसा बनाना है कि अगर बच्चे के नंबर कभी कम आए हैं, क्या करना है? मान लो उसने आकर बताया कि मेरे इतने कम आए हैं, कैसे हमें डील करना है उसके साथ? वो व्यक्ति ज्यादा जरूरी है या नंबर ज्यादा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. कौन ज्यादा जरूरी है? वो व्यक्ति ज्यादा जरूरी है या नंबर ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमारे यहां बिठाया गया है, नंबर सब कुछ है. नंबर्स, कितने नंबर्स आए, अगर आपके ज्यादा नंबर आए दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, एक बच्चा है जिसके 80% आए, दूसरा है जिसके 90% आए, दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? 80% वाला, 90% वाला? ज्यादातर लोग बोलेंगे 90% वाला. जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स से हमें डिसाइड नहीं करना है. हो सकता है जिसके 90% आए उसको बोलने का ढंग नहीं है, बड़ों से बात करने का ढंग नहीं है, और हर बात पे गुस्सा, मोबाइल एडिक्शन है उसको. इमोशनली इंटेलिजेंस भी होना बहुत जरूरी है. तो जब भी आज से पक्का करेंगे, ठीक है, समझाना है उसको, नंबर ज्यादा आने चाहिए, बट ये भी हमें समझना है, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है. कोई पढ़ने में तेज है, कोई किसी और चीज में तेज है. तो हमें समझाना है, स्ट्रिक्ट होना है कई जगह पर, लेकिन हमेशा नहीं डांटते रहना है सबको, हमेशा गुस्सा नहीं करते रहना है. उसको समझना है, अच्छा आप क्यों कम आए, आप बताइए नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे. इसको बोलेंगे एम्पथी. उसके इमोशंस को समझा, उससे बात की, उससे खुद पूछा कि आगे आपको क्या करना है, कैसे इसको इंप्रूव करेंगे. तो ये है लो आईक्यू, हाई आईक्यू. हाई आईक्यू मींस कनेक्शन देन करेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर घर में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, रिलेशनशिप के लिए. कनेक्शन देन करेक्शन. दूसरा क्या है? ओनली करेक्शन, नो कनेक्शन. कई लोगों की आदत क्या होती है? हर बात पे दूसरों को टोकने की, बात बात पे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो. एक स्कूल में प्रोग्राम था, तो वहां काफी सारे बच्चे बैठे थे, तो मैंने एक प्रश्न पूछा सबसे. मेरा पूछने का भाव तो अलग था. मैंने पूछा कि हर दिन, पूरे दिन भर आप चेक करिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको कौन बोलता है? तो मेरा भाव तो ये था कि हम खुद बोलते हैं अपने लिए नेगेटिव. एक छोटी सी बच्ची 7th क्लास की, उसने बहुत मासूमियत से उत्तर पता है क्या दिया? क्या उत्तर दिया होगा सोचिए, क्या उत्तर दिया होगा? उसने कहा मम्मी. उसने कहा मेरी मम्मी मेरे को दिन भर नेगेटिव बोलती है सबसे ज्यादा. अब जो मदर है उसका भाव गलत नहीं है, लेकिन करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ये कमी है, ऐसा करो ऐसा करो, तुम तो कोई बात मानते नहीं हो, तुम तो ऐसे नहीं हो. और ये ध्यान रखें, कभी भी ये शब्द बोलते हुए बहुत ध्यान रखना है, हमेशा शब्द बोलते हुए बहुत ध्यान रखना है. हम ऐसे ही बोल देते हैं हमेशा. कोई लेट हुआ एक बार, मान लो 10 बार समय पे आया, 3 बार लेट हुआ, हम क्या बोलते हैं सामने वाले को? तुम तो हमेशा ही लेट हो. उसने 10 बातें मानी, 1 बात नहीं मानी, हमने क्या कहा? तुम तो मेरी 1 भी बात नहीं मानते हो, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो. हमेशा शब्द बहुत ध्यान से चूज करना है. अगर निकल भी जाए बात बात में, उस समय रुकना है, उनको कहना नहीं हमेशा नहीं, कभी बात मानते हो, कभी बात नहीं मानते. तो आज से पक्का करेंगे, बात बात पर हमें दूसरों को टोकना नहीं. एक बार बोलिए सभी, दूसरों को टोकना नहीं. एक बार एक छोटा बच्चा बैठा था पार्क में, और वो चॉकलेट खा रहा था, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूस खाता जा रहा था. तो वहां एक माता बैठी थी, उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, उसे रहा नहीं गया, उसके पास उठ के गई, उसने कहा बेटा इतना चॉकलेट नहीं खाते, नहीं तो आप जल्दी मर जाओगे। उसने कहा कि माताजी मेरी जो दादी थी ना वो 100 साल तक जी। वो पूछती है क्यों, बहुत चॉकलेट खाती थी वो? कहते नहीं चॉकलेट नहीं खाती थी, वो अपने काम से काम रखती थी। अपने काम से काम रखना है, लेकिन हमारी आदत क्या है, सबकी नहीं ज्यादातर लोगों की, कोई जा रहा होगा हम कहेंगे यहां क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, जहां जरूरी नहीं है वहां अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस नहीं देने। गाड़ी चला रहा है कोई, आप बैठे हैं साइड में, नहीं बोलना है ऐसे चलाओ वैसे चलाओ स्लो चलाओ, तो सामने वाला कहता है आप ही चला लो फिर आकर। हर बात पे दूसरों को टोकना नहीं है। यहां का बहुत सुंदर एक स्लोगन है, आप उसको प्रैक्टिस करना घर जाकर, यहां तो हो जाएगा लेकिन घर जाकर भी करना है, कम बोलो मीठा बोलो और कैसे बोलो, धीरे बोलो। वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, धीरे, कमजोर नहीं। धीरे बोलना कमजोर की निशानी नहीं है, धीरे बोलना है। कई जगह स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो हमने कहा गुस्सा नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस कई कई जगह हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे अगर चेक करेंगे ना, एक दिन भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम बोलते हैं उसका कितने परसेंट जरूरी है, दिन भर जितना हम बोलते हैं आपको क्या लगता है कितना परसेंट है जो जरूरी है? हाँ जी, 5%, 10%, 50%? बिल्कुल भी नहीं, 10%। एक्चुअल में रिसर्च ये कहती है कि लगभग 5-10% ओनली। हम इतना कम नहीं कहते, लेकिन आप सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करके देखना, मुझे जितना हम बोलते हैं उसका 50% बोलना है सिर्फ, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं बोलना है, इंटरफेयर नहीं करना है। आप देखेंगे आपका मन भी शांत रहेगा और सामने वाले भी आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। किसी को पसंद नहीं है कि उनको बार बार टोका जाए, चाहे उनके भले के लिए। हम खुद पर लेकर देखें, क्या हमें पसंद है कोई हमें बार बार टोके, चाहे हमारे अच्छे के लिए? हाँ, समझाना, एक बार समझा दीजिए, बार बार पसंद नहीं है किसी को भी, ऐसे ही दूसरों को भी पसंद नहीं है, तो हमें बार बार करेक्शन नहीं करना। हाई IQ लो IQ, पीपल रिस्पेक्ट देम इवन वेन दे आर नॉट अराउंड, पीपल रिस्पेक्ट देयर पोजिशन ओनली आउट ऑफ फियर। जब हम प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को, उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, शांत हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं उससे, वो आया अपनी प्रॉब्लम लेकर उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो हमें दिल से रिस्पेक्ट करेगा, और तब भी रिस्पेक्ट करेगा जब हम उसके सामने नहीं है। लेकिन अगर हमारी लो IQ है, मीन्स हर बात पे गुस्सा, हर बात पे रिएक्शन, हो सकता है आउट ऑफ फियर, क्योंकि शायद वो छोटा है अभी नहीं बोल सकता है वापस, सुन भी लेगा वो, लेकिन जब आप वहां नहीं होंगे, पीछे से जब हमारे बारे में वो बात करेगा तो पॉजिटिव बात नहीं करेगा, ठीक है, इन्होंने तो परेशान किया हुआ है, ये ऐसा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, लो IQ से हाई IQ की ओर अपने आप को लेकर जाना है। उसकी 4 टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला, फर्स्ट, 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, चलो 1 मिनट बैठेंगे साइलेंस में, जो भी हाथ में है साइड पे रखकर 1 मिनट पूरा ध्यान खुद पर ले आए। अपने इमोशंस को देखेंगे, मेरे मन में क्या चल रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व करें। लास्ट टाइम जब हमें गुस्सा आया था उस सीन को सामने लाएं। गुस्सा क्यों आया था चेक करें, हमने कैसा फील किया, उस समय मेरे क्या इमोशंस थे, ओम शांति। तो हमने ये सिर्फ एक मिनट किया, आप इसको वापस जाकर 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। आपने सिर्फ कुछ चेंज नहीं करना है, अपने इमोशंस को बदलने की कोशिश नहीं करनी है पहले स्टेप में, सिर्फ क्या करना है, मैं कैसा फील कर रहा हूं। जब आपको गुस्सा आ रहा है मान लीजिए, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, जस्ट बिकम अवेयर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, बुरा फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं मेरे अंदर। और इसमें एक और स्टेप हम क्या कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर जो भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं उसको राइट डाउन कर दीजिए। अभी चेंज नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, सेल्फ अवेयरनेस को बोलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट, वो सेकंड स्टेप है। वहां तक शुरू शुरू में नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अवेयर होना सीखिए मैं क्या फील कर रहा हूं। जब गुस्सा आ रहा है सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व कर लीजिए कि गुस्सा मैं कर रहा हूं, मतलब सामने वाले ने मुझे गलत बोला, लेकिन गुस्सा करना है या नहीं करना है, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूं तो इस सिचुएशन में बिना गुस्से के भी रहा जा सकता है। हो सकता है अभी गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, बट पॉसिबल है ये चीज, मतलब ये जो एंगर का इमोशंस है इसको चेंज किया जा सकता है थोड़ी सी मेहनत से। तो पहला स्टेप क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, अपने इमोशंस को मैनेज करना। गुस्सा आ रहा है, याद दिलाना है खुद को, ठीक है उसने ऐसा बोल दिया, इट्स ओके। किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, गुस्सा आता है या नहीं आता है, हर्ट होता है या नहीं होता है। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, हर्ट हो रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप को समझाना, अपने इमोशंस को मैनेज करना कि नहीं उसने गलत बोला, वो उसका ओपिनियन है, मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जब बार बार समझाएंगे खुद को, आप देखेंगे धीरे धीरे इमोशंस मैनेज करना हमें आ जाएगा। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, मतलब जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया, कोई बच्चा सामने आया या कोई व्यक्ति सामने आया, उसने सारी प्रॉब्लम बताई, सोशल अवेयरनेस, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कहना नहीं नहीं ये तो बहुत छोटी बात है, एकदम से ऐसा नहीं कहना है, उस वो क्या फील कर रहा है उसको ऑब्जर्व करने की, उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो बुरा फील कर रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ। और फिर चौथा स्टेप आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, पहले समझा जिसको हम एम्पथी कहेंगे, चौथा स्टेप क्या है, उसको समझाना, उसको गाइड करना, उसको इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना कि नहीं किसी ने आपको गलत बोला, दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप शक्तिशाली है। और एक चीज जो हमें दूसरों को याद दिलानी है वो क्या है, आप पावरफुल हैं। बार बार बच्चों को भी क्या याद दिलाना है, यू आर पावरफुल। जो साथ में लोग हैं उनको भी क्या याद दिलाना है, यू आर पावरफुल। लेकिन उन सबको याद दिलाने से पहले किसको याद दिलाना है, स्वयं को, आई एम पावरफुल। ये जो अलग अलग सिचुएशंस हैं इससे हम डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किस किस को लाइफ बहुत मुश्किल लगती है, ऐसा है कोई बैठा है यहाँ, मुश्किल लगती है, इजी लगती है, यहां तो आसान लग रही है, लेकिन सोचिए घर पे है, ऑफिस में है, लाइफ इज इजी और लाइफ इज डिफिकल्ट,
बच्चे संभालना, घर संभालना आसान है या मुश्किल है? आजकल लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है। मेन रीजन क्या है उसका? क्योंकि हम खुद को समय नहीं देते हैं। जब तक इसको नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला, इमोशंस को नहीं संभाला, तब तक हम दूसरों को संभाल ही नहीं सकते। ऑफिस में जाएंगे, अलग अलग संस्कार मिलेंगे लोगों के, कोई गलत ढंग से बात करेगा, कोई प्यार से बात नहीं करेगा, कोई हमारे बारे में सामने तो बहुत अच्छा बोलेगा, पीछे जाकर नेगेटिव बोलेगा। अब वहां अगर हम हर्ट होते जा रहे हैं बार बार, हमारे इमोशंस बार बार टर्बुलेंट हो रहे हैं, तो क्या होगा? इजी लगेगा सब कुछ, बहुत मुश्किल लगेगा। हम कहेंगे बहुत मुश्किल है सब कुछ, सामने वाला तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है, तब भी मन को शांत रखना, तब भी इस बात को स्वीकार करना, हम सब अलग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं। और इसके लिए एक रूल मैं शेयर करता हूं हमेशा सबके साथ, वो रूल है 80-20 रूल। 80-20 रूल, ये क्या है? जीवन में सिचुएशंस 80% हमारे अनुसार होंगी, लगभग अप्रोक्स 20% हमारे अनुसार नहीं होंगी। स्वीकार करना है इस चीज को। सबसे ज्यादा परेशान, दुखी, स्ट्रेस, एंगर किन लोगों को होता है? जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, एकदम एकदम परफेक्ट। बच्चे, मेरी हर बात, मतलब 100 बातें आपने बोली, आप में से कौन कौन चाहता है कि 100 की 100 बात माननी चाहिए बच्चों को? ऐसे हैं कोई? मैक्सिमम होंगे हम, क्योंकि हमने कुछ समझाया और उसने अपना कुछ बोल दिया बीच में, हम कहते हैं अच्छा अब तुम समझाओगे हमें, एक बार कह दिया कर लो बस। नहीं, 80-20, बच्चे या छोटे कोई भी लोग हैं, कुलीग्स, सीनियर्स, कोई भी, 80% हमारी बात मानेंगे लगभग, 20% मेरी बातें नहीं मानेंगे। इसके साथ जिसने जीना सीख लिया, 80-20%, कुछ चीजें मेरे अनुसार होंगी, कुछ चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी, उसका मन कैसा रहेगा? शांत। इसको कहा जाएगा इमोशनली इंटेलिजेंट होना। तो एक लाइन मेरे साथ बोलिए सभी, और इसको अपने जीवन का मंत्र हमें बनाना है, सब कुछ मेरे अनुसार। पूरा करिए, पूरा करिए, इसको क्या करेंगे? सब कुछ मेरे अनुसार होगा या नहीं होगा, सोच लीजिए। क्योंकि जो हम बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने, जो हम बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, है ना, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप सोच लीजिए, सब कुछ मेरे अनुसार होगा या सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। बाहर समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। बाहर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो सकता। गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है। अब इसमें कई लोग होंगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये भी कर सकते हैं। और कुछ होंगे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमें खुश रहना है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसको सही करने के लिए हम अपने स्टेप्स क्या ले सकते हैं? चाहे वो बेबी स्टेप है, एटलीस्ट कुछ तो किया ना हमने। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, कुछ चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई, उसमें दुखी होना नहीं। और दूसरा, सब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे। बोलिए सभी। अभी तो बहुत स्लो आवाज हो गई। सब लोग, मैं बोलता हूं पहले, सब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते। जिसने इसको जल्दी समझ लिया, उसका मन क्या रहेगा? शांत। वो कहेगा ठीक है, आपने मेरे, मैंने 10 बार आपको कहा मोबाइल छोड़ दो, आपने 8 बार मान लिया ना, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू करिए उसका, किसी ने आपकी बात मानी तो। ये नहीं कि दस में से दो नहीं मानी उसको पकड़ ले हम, नहीं, आठ मानी शुक्रिया करिए उसका, ठीक है। और एक चीज जो हमें यहां से अच्छे से सीख कर जानी है, इसलिए हम आए हैं यहां पर मेडिटेशन के लिए, है ना। तो मेडिटेशन के हमने तीन स्टेप समझे हैं, क्योंकि जितना हम मेडिटेट करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक इमोशनली इंटेलिजेंट हम होंगे, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है वो दूसरों के इमोशंस को आराम से मैनेज कर सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई या अलग अलग थॉट्स हो गए। सेकंड इज सोल कॉन्शियसनेस। थर्ड स्टेप क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस, उस परमात्मा से कनेक्ट होना। तो अभी हम सिर्फ दो मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हमें शुरू करनी है उससे पहले भी हमें मेडिटेशन करके एंड खत्म करने से पहले भी मेडिटेशन खत्म करते हुए वो करके करें। तो जीवन का नियम बना ले कि घर से निकलना है मेडिटेट करके, घर पहुंचे मेडिटेट करे, चाहे एक एक मिनट के लिए, तो ये हमारा संस्कार बन जाएगा। चलो पूरा ध्यान खुद पर ले आए। चारों ओर से डिटैच करें खुद को। हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। चेहरे पर स्माइल, मैं अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मन की स्क्रीन पर सामने लाएं। और उन्हें एक मैसेज दें, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज। अपने वर्क प्लेस में जो भी लोग आपके साथ हैं उन्हें सामने लाएं। उन्हें भी मन से मैसेज दें, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज, एज यू आर। पावरफुल एनर्जी, मैं शक्तिशाली आत्मा। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। आज से ये मेरा नया जीवन है। हर दिन मुझे अपने पे काम करना है, हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है हर रोज। आज पूरा दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमें मिलेगा उसे देखकर स्माइल करते हुए उनको मन से ब्लेसिंग्स देनी है। परेशान।
ओम शांति। कमल भाई जी का इंट्रोडक्शन देते समय मैंने बहुत सी बातें छिपा के रख ली थी। मैं चाहता था कि आप खुद देखें हाथ कंगन को आरसी क्या। भाई जी की जो ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है अब आपको पता चल गई होगी। भाई जी ने कम से कम 3 लाख लोगों को डिप्रेशन से, सुसाइडल टेंडेंसीज से और कई व्यसनों से बचाने में हेल्प की है बाय वर्च्यू ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। आज आपको उन्होंने बहुत छोटी छोटी टिप्स दी हैं, बहुत से इशारे दिए हैं, मुझे मालूम नहीं आपने नोट किए कि नहीं किए। 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो भाई जी ने बताया। एक तो उन्होंने कहा कि परिस्थिति जो है आपकी स्वस्थिति को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जो है आपकी स्थिति खराब नहीं करने चाहिए। नंबर दो उन्होंने बताया ये जीवन एक प्रतिध्वनि है, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुना तुमको पाना ही होगा। इस लॉ ऑफ नेचर, आप जो देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। तीसरा, भाई जी ने जो इमोशनल कोशेंट जिसके बारे में हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं उसको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है और लो इमोशनल कोशेंट से हाई इमोशनल कोशेंट में जाने के लिए एक ही तरीका उन्होंने बताया है कि आपको खुद को समझना है, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, उसके बाद आप सोसाइटल मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बात की चीजें हैं सब। तो सबसे ज्यादा आपने जो फोकस करना है भाई जी के मुताबिक आपने अपने ऊपर फोकस करना है और उन्होंने इसको आपको सिंपल तरीका बताया, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को सोने से पहले मोबाइल को किनारे रख दीजिएगा और अपने साथ बिताइए समय और साथ साथ में ट्रैफिक सिग्नल जो है बीच में आप जब जाएंगे उसमें ब्रह्म कुमारी ट्रैफिक सिग्नल जो कुछ समय के बाद अपने आप बजता है तो आपको उस समय में अपने आप को कनेक्ट करना है। कमल भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर शब्दों में बहुत प्यार से आपने सब समझाई। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू।